झूठ कहा ये तेरे बारे, तेरे लिए सब एक समान, सब को संगत दे भगवान। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सब को संगत दे भगवान, सब को संगत दे भगवान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान, सारा जग तेरी संतान। जैसे सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया,
सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया, ऐसा ही सुख मेरे मन को मिला है, मैं जब से चरण तेरे आया मेरा। सूरज की गर्मी से जलते हुए तन को मिल जाए सरोवर की छाया,
भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा,
भटका हुआ मेरा मन था कोई मिलना रहा था सहारा,
लहरों से लड़ती हुई नाव को।
उनकी भी व्याख्यात्मक वाणी चलती अभी एडवांस में मम्मा बाबा के समय की पुरानी मुर्गियां मिल गई, धीरे धीरे एक एक करके जो जो मुर्गियाँ इस तरह से परिष्कृत होती जाएंगी, उनका क्लैरिफिकेशन डायरेक्ट बनता जाएगा। आज है तेरे साथ अड़सठ की साकार वर्ण मीठे मीठे रूहानी बच्चों को बाप कहते हैं, अपन को आत्मा समझो और बाप को याद करो। कहते कौन है, कहने वाली आत्मा कौन है, तो जिनको बाप कहते हैं ओम शांति। इसका अर्थ तो बच्चों को संग है, बाप भी बोलते हैं ओम शांति और बच्चे भी बोलते हैं ओम शांति, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांति। का मतलब जब हम या कोई भी अशांति में होते हैं तो स्वधर्म में होते हैं या परधर्म में टिके होते हैं। पर माना माया, माया रावण, माया रावण की धारणा में जब टिक जाते हैं तो आत्मा अपन को शांत स्वरूप अनुभव नहीं करती। तुम अभी जान गए हो कि हम शांति धाम में थे, शांति धाम से यहाँ आते हैं पहले पहले सुख धाम में। तो ग्रेड ऊंचा चढ़ा नीचा चढ़ा, शांति धाम से सुख धाम में आए तो नीचे उतरे या ऊंचे गए? नीचे आए हैं। सुख ज्यादा ऊंची चीज है या शांति ज्यादा ऊंची चीज है?
सुख,
क्योंकि दास का वर्षा है सुख और शांति का। शांति और सुख नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? सुख शांति का वर्षा। तो ऊंची से ऊंची स्टेज में बाप आकर के हमको सुख की स्टेज में भेज के सुखधाम में, फिर 84 जन्म लेते लेते दुखधाम में आ जाते हैं। क्यों? शांति धाम से सुखधाम में आए तो उतरना क्यों होता है?
क्योंकि आत्मा जितना जितना सुख भोगती है उतना उसकी शक्ति पहले कम क्षीण होती है और बाद में ज्यादा से ज्यादा क्षीण होती जाती है। तो दुख का कारण क्या हुआ? पुनर्जन्म लेना। अच्छा, ये तो 5000 वर्ष के ड्रामा की बात हुई। शूटिंग पीरियड में आत्मा क्यों दुखी होती जाती है? भगवान बाप मिला, ऊंचे से ऊंचा ज्ञान मिला, फिर आत्मा ऊपर चढ़नी चाहिए या नीचे गिरती जाती है? क्यों? क्योंकि जब से ज्ञान में आते हैं तो जन्म मरण का चक्र, उसकी शूटिंग शुरू हो जाती है। ब्राह्मणों की दुनिया में जन्म किसे कहा जाता है? निश्चय बैठा माना जन्म हुआ, और अनिश्चय बैठा माना मृत्यु हो गई। निश्चय किस बात का? बाप के ऊपर निश्चय किए हमारा बाप आया हुआ है। बाप आया हुआ है ये निश्चय बैठा तो उसमें परसेंटेज होती है क्या कि 90% हमारा बाप आया हुआ है, 10% बाप? नहीं होगा। ऐसे लौकिक जीवन में भी कोई नहीं कहता होगा कैसे कि हमारा 90% बाप है, 10% बाप? नहीं है। बाप है तो बाप है, और नहीं है तो नहीं है। तो जब निश्चय उखड़ जाता है, संशय आ जाता है, तो संशय आत्मा विनश्यति, उसका सुख शांति का वर्षे का नाश हो जाता है। तो पुनर्जन्म में आने से, जन्म मरण के चक्र में आने से आत्मा नीचे गिरती है। तो क्या करना चाहिए? सदैव निश्चय बुद्धि विजयंती की विजयते की स्टेज में रहना चाहिए। तो ये बात तो तुम बच्चों को याद है ना बच्चे, 84 जन्म जीवात्मा बनते हैं और बाप जीवात्मा नहीं बनते हैं। कौन सा बाप? बाप तो बेहद के दो हैं, एक है सुप्रीम सोल बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप और दूसरा है मनुष्य आत्माओं का बाप। तो जीवात्मा कौन नहीं बनता और कौन सा बाप बनता है? जो जीवन धारण करता है वो जीवात्मा बनता है और जो जीवात्मा नहीं बनता कभी भी जीवन धारण नहीं करता, माना जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आता, वो बाप है सुप्रीम सोल। कहते हैं मैं टेम्परेरी इनका आधार लेता हूं, नहीं तो पढ़ाएंगे कैसे? इनका आधार लेता हूं, इनका, इसका नहीं कहा, माना कोई दो आत्माएं हैं जो शशि रूपी रंगमंच पर माता पिता का पार्ट बजाती हैं, जिन्हें दूसरे धर्म वाले भी एडम ईव आदम हवा कहते हैं, भारत में उनको आदिदेव आदिदेवी कहते हैं, इनका आधार लेता हूं। लेकिन आधार 5000 वर्ष के लिए लेता हूं या सिर्फ संगम युग में थोड़े समय के लिए लेता हूं? टेम्परेरी आधार लेता हूं।
अगर आधार नहीं लूंगा तो पढ़ाऊंगा कैसे? बच्चों को घड़ी घड़ी ऐसे कहेंगे कि मन मना बाबू, क्या बाबू? मत मना भव, मत माना मेरे, मना माने मन में, भव मन समझ, क्या कर? मेरे मन में समझ। अच्छा, सुप्रीम सोल को मन होता है?
नहीं,
है? सुप्रीम सोल को तो मन नहीं होता है, फिर उन्हें समझ आने की बात कहाँ पैदा होती है? जब वो प्रवेश करता है तो जिस तन में प्रवेश करता है उसको अपना मन, मन रूपी घोड़ा होता है, तो उस मन रूपी घोड़े के जो श्रेष्ठ संकल्प हैं उन संकल्पों में तू भी समझ, माना तेरे संकल्प मात्र भी जिस तन में आता हूँ उस तन के संकल्पों से विपरीत नहीं होने चाहिए, संकल्पों तक समानता होनी चाहिए, वाचा और कर्मणा की तो बात ही बहुत बड़ी है, वाचा कर्मणा में तो विपरीत होने की बात होना ही नहीं चाहिए, संकल्पों तक भी समानता। मन मना भव अर्थात मुझे याद करे और अपनी राजाई को याद करे, इसको कहा जाता है सेकंड में विश्व की बात से। क्या याद करो? मुझे याद करो, माने किसको याद करो? दिल्ली को, दिल्ली विश्व का बात कहा बनेगी? नहीं बनेगी। अगर सिर्फ बिंदी को याद किया तो हम भी क्या बन जाएंगे? बिंदी बन जाएंगे तो कहाँ बैठना पड़ेगा? परम धाम में बैठना पड़ेगा। तो ये नहीं कहा ये मुझे बिंदी रूप को याद करो, क्या कहा? मना भव मेरे मन में समा जा, मन में जिस तन में प्रवेश करता हूँ उसके मन रूपी जो स्वरूप संकल्पों विकल्पों का है, विकल्प तो उसके चलते ही नहीं, इसके जिसमें मैं प्रवेश करता हूँ चलने ही नहीं देता। कौन नहीं चलने देता? जो लगाम को मन बुद्धि की लगाम को थामने वाला दृष्टिकोण है वो उसके मन को विकल्प में नहीं जाने देता। तो ऐसे स्वरूप में तुम भी समा जाओ, इसको कहते हैं सेकंड में विश्व की बात कर। जैसे को याद करेंगे वैसे ही खुद भी बनेंगे। बेहद का बाप है ना, तो जरूर बेहद की खुशी, बेहद का नशा ही देंगे और बेहद का वर्षा देंगे। भारत में ही आकर के बच्चों को बाप बेहद का वर्षा देते हैं, कहाँ करके भारत में आकर देते हैं, ऐसे नहीं आकर के ज्ञान सुनाते हैं और चले जाते हैं, बाद में वर्षा मिलता रहता है, नहीं, भारत में आते हैं और आकर के वर्षा दे करके जाते हैं। आज से 5000 वर्ष पहले तुम भारतवासी विश्व के मालिक थे, जिसको सुखधाम कहते हैं। बाप बहुत सहज रास्ता बताते हैं। मीठे मीठे बच्चों, अभी क्या करो? अभी क्या बताया? मन मना भव मना, अभी दुख धाम को बुद्धि से निकाल दो। क्या
दुख धाम को बुद्धि से निकाल
दो? किस आधार पर? बाप ने जो ज्ञान दिया है उस ज्ञान के आधार पर इतनी पराकाष्ठा का ज्ञान मिला हुआ है कि बुद्धि से दुख धाम की बात निकल जानी चाहिए। यहाँ इस दुखधाम में बहुत दुख है, तो इनको बुद्धि से निकाल दो। बाप जो नई दुनिया स्वर्ग स्थापन कर रहे हैं उनका मालिक बनने के लिए मुझे याद करो। नई दुनिया का मालिक बनना चाहते हो तो मुझे याद करो, माना जैसी मेरी स्थिति है वैसी तुम्हारी भी स्थिति हो जानी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो तुम्हारे सभी पाप कट जाएंगे। तुम सेकंड में कटो प्रधान बन जाएंगे। फिर से 5000 वर्ष पहले भी सतो प्रधान बने थे और अब फिर से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हम सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। कैसे? पुनर्जन्म लेते लेते निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते आते हम तमो प्रधान बने। पीरियड में कितनी बार आवृत्ति करते हैं? कम से कम 4 बार। हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और समझना है, फिर ऊपर चढ़ते हैं, फिर नीचे गिरते हैं, फिर ऊपर चढ़ते हैं। अब ये कब तक करते रहेंगे? तुम अच्छा तो प्रधान बन जा रहेंगे, अभी तो तमो प्रधान। इसको कहा जाता है सहज याद। जैसे बच्चे लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं, लौकिक माँ बाप सहज रीति याद आते रहते हैं। और इस पारलौकिक बाप को याद करने के लिए क्या क्या काम ध्यान इकट्ठा करते हैं? टेप रिकॉर्डर बजाओ, लाल लाइट करो, संगठन की याद में बैठो। और लौकिक बाप को अकेले बैठे भी याद करते रहते हैं, कोई तामझाम की दरकार नहीं। तो आर्टिफिशियल याद कौन सी है और सहज और ओरिजिनल याद कौन सी है? ओरिजिनल याद तक हमको पहुंचना है। लौकिक बाप को कितना सहज याद करते हैं, वैसे तुम बेहद के बच्चों को भी बेहद के बाप को याद करना है। बाप ही दुख से निकाल सुख में ले जाते क्या? सुख में ले जाने वाला और कोई मनुष्य मात्र गुरु नहीं है। यहाँ तो दुख दुख ही दुख है और वहाँ तो दुख का नाम निशान नहीं होगा। बहुत सहज बातें बताते हैं, कहते हैं अपने शांति धाम को याद करो। जो बाप का घर है वो ही तुम्हारा घर है। और स्वर्ग नई दुनिया को याद करो, ये तुम्हारी राजधानी है। बाप तुम बच्चों को कितनी निष्काम सेवा कराते हैं और करते भी हैं। तुम बच्चों को सुखी करके खुद वानप्रस्थ में जाकर बैठ जाते हैं। तुम भी तो परम धाम के वासी हो, सुखधाम में तो बाद में आते हो, पहले कौन सी स्टेज में पहुंचते हो? शांति धाम में पहुंचना माना वाणी से परे की स्टेज में पहुंचते। अशांति मारा मारी कब होती है? जब बहुत वाणी में आती, एक ने बोला दूसरे ने उससे ज्यादा तीखा बोल दिया, तो शांति धाम नहीं हो सकता और यह शांति बढ़ती जाती है। वास्तव में तुम शांति धाम वासी हो, जिसको निर्वाण धाम वानप्रस्थ कहा जाता है। बाप आते ही हैं बच्चों को खिदमत करने के लिए, अर्थात वर्षा देने के लिए। ये खुद भी बात है, वर्षा लेते हैं। यह कौन
सरकार
फिर बाबा तो है ऊंच से ऊंच। क्या है ऊंच से ऊंच? भगवान। ये कुछ नहीं लेता है,
कुछ नहीं।
शिव बाबा है ऊंच से ऊंच भगवान। शिव के मंदिर भी कहाँ होते हैं? शिव के मंदिर ऊंची स्टेज में होते हैं। मंदिर हमेशा शिव का
ऊंची
गड्ढे में नहीं बनाया जाता, कहाँ बनाया जाता है?
ऊंची
ऊंची स्टेज में बनाया जाता है। उनका कोई बाप बच्चीचर नहीं होता, इतना ऊंचा है कि उनको जन्म देने वाला कोई बाप नहीं, वर्षा देने वाला कोई बाप नहीं, और समझाने वाला उसका कोई
बाप
टीचर, उसको कोई भी समझाया नहीं सकता। सारी शक्ति के आदिमध्यंत का ज्ञान उनके पास है, आया कहाँ से? क्या कोई वेद शास्त्र आगे पढ़े? नहीं, बाप तो है ही ज्ञान का सागर। वो सृष्टि के आदि मध्यंत को जानते हैं, बच्चे मेहनत भी करते हैं, बरोबर बाप सुख का सागर है, शांति का सागर है और पवित्रता का सागर है। ये महिमा और कोई की भी नहीं होती। कौन सी महिमा? जो ज्ञान का सागर हो, सुख का सागर हो और पवित्रता का सागर हो। विश्व के आदिमध्यंत का राज जो सुनाते हैं, उनकी बायोग्राफी आर्टिकेशन ही अलग है। फिर ऊंच से ऊंचे है जो विश्व के मालिक बनते, पहला नंबर ऊंच से ऊंच भगवान किसको बताया? सुप्रीम सोल शिव को। और फिर ऊंच से ऊंच जो है वो कौन है? जो विश्व के मालिक बनते हैं। ये नहीं कहा वैकुंठ के मालिक बनते हैं या सतयुग के मालिक बनते हैं, क्या कहा?
विश्व
के, जो विश्व के मालिक बनते हैं। विश्व किसे कहा जाएगा? विश्व कहा जाएगा जहाँ सब धर्म मौजूद हो, 500 करोड़ की दुनिया जहाँ पर मौजूद हो। तो ऊंच से ऊंच हुआ है, सेकंड नंबर में ऊंच से ऊंच, फर्स्ट नंबर में कौन? सुप्रीम सोल शिव, और सेकंड नंबर में ऊंच से ऊंच तो विश्व के मालिक बनते हैं जिनको लक्ष्मी नारायण कहते हैं। कौन से लक्ष्मी नारायण? सतयुग के नीचे उतरती कला वाले नारायण लक्ष्मी नारायण नहीं, जो संगम युग में लगातार ऊंची स्टेज में चलने वाले लक्ष्मी नारायण बनते, विश्व के मालिक बनते हैं। इन्हों की महिमा अलग है। इन्हों की जो संगम युग में सारे विश्व के मालिक बनते हैं, उन लक्ष्मी नारायण की महिमा और जो आगे आने वाले लक्ष्मी नारायण हैं उनकी महिमा से बिल्कुल अलग है। जो पूरे 84 जन्म लेते हैं उनकी महिमा करते हैं। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण हिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम, तो फर्क हो जाता है ना। इसमें किस में फर्क हो जाता है? पहले नारायण में जो नर से नारायण बनते हैं और जो सतयुग में नंबर वार नारायण बनेंगे उनमें फर्क हो जाता है। उनकी महिमा में फर्क हो जाता है। बाप की महिमा और दैवी गुणों वाले मनुष्यों की महिमा में फर्क जरूर हो जाता है। इन्हों को ये दैवी गुणों की प्राप्ति हुई है बाप से। इन्हों को कैसे किसकी तरफ इशारा किया? जो संगम भी लक्ष्मी नारायण है उनकी तरफ इशारा किया कि इनों को प्राप्ति किससे होती है, डायरेक्ट सुप्रीम सोल बाप से। और दूसरे भी लक्ष्मी नारायण नंबर वार सचिव में बनते हैं, उनको डायरेक्ट सुप्रीम सोल की श्रीमत पर चलने की हिम्मत उनमें नहीं है। वो क्या करते हैं, वो कोई न कोई मनुष्य गुरुओं की चकरी में फंस जाते हैं, एक ही मत पर नहीं चल पाते। तो इनों की ये दैवी गुणों की प्राप्ति हुई है बाप से। दैवी गुणों की प्राप्ति
बाप से,
धारणा की बात हुई ना, ये धारणा इन्होंने किससे प्राप्त की, जो बातें धारण की हैं उनके आधार पर जो धारणा बनी वो बाप से डायरेक्ट इन्होंने प्राप्त की, और किसी मनुष्य मात्र के प्रभाव में ये आए ही नहीं। तो वो दैवी गुण धारण कर देवता बनने वाले पहले आसुर गुण असुर कहलाते थे, असुर से देवता बनाना ये तो बाप का ही काम है। क्या मनुष्य से देवता नहीं बताया, असुरों से देवता बनाना ये तो बाप का ही काम है। एम आप जैसे भी तुम्हारे काम है, क्या है, है? हमको इस तरह का नर से डायरेक्ट नारायण बनना है, नारी से डायरेक्ट इसी जन्म में लक्ष्मी बनना है। ये हम ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है, जड़ चित्रों में है या चैतन्य चित्रों में है। जड़ चित्रों वाली अगर हम ऑब्जेक्ट रखेंगे तो क्या बनेंगे, जड़ बुद्धि बनेंगे, और चैतन्य चित्रों वाली अगर हम ऑब्जेक्ट सामने होगी तो हम भी चैतन्य चित्र बनेंगे। स्वयं ऑब्जेक्ट तुम्हारे सामने है, तुम जानती हो कि पहला हमारा जन्म ये था, क्या जो 84 जन्मों में सबसे ऊंच से ऊंच जन्म है वो हमारा पहला जन्म था। जरूर ऐसे श्रेष्ठ कर्म किए होंगे, कैसे, जो हमने इतना श्रेष्ठ जन्म पाया, कर्म अकर्म विकर्म की गति अथवा हर बात समझाने में बाप को सेकंड लगता है। कोई कठिनाई कोई देर नहीं लगती। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, तुम आत्माओं को पार्ट तो बजाना है, ये पार्ट तुमको अनादि अविनाशी मिला हुआ है, ये पार्ट कब विनाश नहीं हो सकता। तुम कितना बारी सुख दुख के खेल में आए हो, कितना बारी तुम विश्व के मालिक बने हो, फिर हार खाते आए हो। जब बाप आते हैं तो हार खाना चाहिए या जीत पहनना चाहिए, जीत पहनना चाहिए, लेकिन क्या होता है, बाप के आने पर भी हार खाते हैं। क्यों, क्योंकि श्रीमत पर पूरा पूरा नहीं चलते, निश्चय अनिश्चय के चक्र में आते रहते हैं। विनाश, हाँ, कितनी बारी तुम किसी के मालिक बने हो और फिर हार खाए हो, तुम विश्व के मालिक थे, कितना सुखी थे, अभी तो कुछ भी नहीं। जमीन का टुकड़ टुकड़ भी नहीं। तुम कितना ऊंचे बनते हो, फिर कितना नीचे गिरते हो। ऊंचे को सतो प्रधान और नीच को तमो प्रधान कहा जाता है। क्या कहा? जब तीन पैर पृथ्वी टुकड़ जमीन भी नहीं मिलती तो नीचे हुए या ऊंचे हुए?
नीचे
हुए। यादगार कौन सी है? वो ऊंच से ऊंच की यादगार भी बनी हुई है पैरों पैरों में। लक्ष्मी नारायण का मंदिर कितना भव्य बनाया जाता है, और दूसरे देवताओं के मंदिर नंबरवार बनाए जाते हैं। तो अभी तो देखो, जमीन का टुकड़ टुकड़ भी तुम्हारे पास नहीं है। क्या कहे न, पांडवों को तीन पैर पृथ्वी के भी नहीं मिले। तुम कितना ऊंचे बनते हो, फिर कितना नीचे होते जाते हो। नीच को तमो प्रधान कहा जाता है, तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान, फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान। तुम कल्प कल्प ऐसे बनते रहते, तो ये विचार करो, ये विचार करो। क्या विचार करो? कि हम तमो प्रधान क्यों बनते रहे और सतो प्रधान कब बनते रहे? विचार करो। आत्मा तो कितनी छोटी है, और उसमें छोटी आत्मा में कितना पार्ट भरा हुआ है। आत्मा भी छोटी और परमपिता परमात्मा जो सुप्रीम सोल है वो भी इतना ही छोटा है। कितना है? जितनी आत्मा छोटी है उतना सुप्रीम सोल परमपिता परमात्मा भी छोटा है। 13-7-68 की वाणी का दूसरा भेद, वो सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर है। क्या है? ज्ञान का सागर है और शांति का सागर है। इस शक्ति पर सागर से बड़ी कोई चीज होती नहीं। तो वो ज्ञान का भी सागर है और शांति का भी सागर है। तो तुम आत्माओं को भी आप समान बनाते हैं। क्या बनाते हैं? सागर के बच्चे, सागर मास्टर, ज्ञान सागर बनाते हैं। तुम भी प्रेम का सागर, सुख का सागर बनते हो। देवताओं का आपस में कितना प्रेम होता है, कब झगड़ा नहीं होता। अगर झगड़ा होता है तो इसका मतलब
देवता में
राक्षस संप्रदाय है, अभी देवता नहीं बने। धनी आकर के आप समान बनाते हैं, और कोई ऐसा बना नहीं सके। तुमने कितनी भक्ति की है, यज्ञ तप दान पुण्य जन्म जन्मांतर किए हैं। उन दान तप यज्ञ उनका नतीजा क्या हुआ? तुम जानते हो, सीधे नीचे गिरते आए हो। रावण राज्य के कारण पतित बनते आए हो, तो क्या करो? हैं? रावण राज्य माना 10 सिरों के राज्य से تم پتار ہوتے آئے ہو تو نیچے گرتے آئے. دس پھر میں عقل کتنی طرح کی ہوگی؟ دس پرکار کی عقل ہوگی. تو ابھی کرنا کیا ہے جو بار بار بھول جاتے؟ ایک قیمت پر کیا مایا راوڑ بیچ میں گھس جاتا ہے. ہماری بھی کہتے سنو کیا کہتا ہے ہماری بھی کہتے سنو. بابا مرلی میں کیا کہتے؟ بابا کہتے اگر ایک کے علاوہ کسی دوسرے سے سنا تو گیان کیسا ہو جائے گا؟ بےوچاری گیان ہو جائے گا. تو راون بے وچار پھیلاتا ہے اور باپ اب بے وچاری بناتے. تو راون راج کے کارن تم پتی سے بنتے آئے تو پھر کس کے راج میں رہنا چاہیے؟ رام کے راجیہ میں رہنا چاہیے. لیکن رام کا راجیہ بھی ہوا ہے نہیں ہوا ہے؟ پھر ہو رہا ہے ہو رہا ہے. شروعات کہاں سے ہوگی؟ گھر سے شروعات ہوگی. پہلے تو گھر ہوتا ہے. گھر میں کون ہوتا ہے؟ ماتا پتا اور بچے ہوتے ہیں. تو پتی سے بنتے آئے ہو راون راجی. ابھی تم کو اسمتی آئی ہے. کیا اسمتی آئی ہے؟ کہ ہم راون کے راجی میں ہوتے ہیں تو پتی تو ہوتے آتے. اور ایک رام کے راجی میں ہوتے ہیں تو پاون بنتے. مان ایک کی مت سے سدگتی اور انیکوں کی مت سے جڑ. ابھی تم کو اسمتی آ گئی ہے. اچھا بہت بڑی بات ہو گئی. کیا اسمتی آ گئی؟ کہ ہم ایک کی مت پر چلیں گے دوسرے کوئی کی مت پر نہیں چلیں گے. ہم پاون پوجی تھے پھر پنر جنم لیتے لیتے پتی سے پجاری بنے. بتا دیا پتی تو پجاری کیوں بنے؟ پنر جنم لیتے. تو بار بار اس جنم مرنے کے چکر میں آنا ضروری ہے کیا؟ نہیں. لیکن پھر بھی آتے ہیں. کیوں؟ ڈراما. ماں نے ڈرائی دیا. ڈراما کس نے ڈرایا؟ ماں نے ڈرایا. ارے ماں کہیں ڈراتی ہے؟ ڈراما شوٹنگ کا چکر. اچھا شوٹنگ کا چکر ختم کر دو. اس کا چکر جام کر دو. بھگوان کے لیے کہنا کہ آتے ہی پوجی ہو آتے ہی پجاری ہو. کیا بھگوان ہی پوجی بنتا ہے اور بھگوان ہی پوجا کرنے والا پجاری بنتا ہے؟ یہ تو ان کی جانی ہے. یہ ان کی مہما نہیں ہے. مانا بھگوان کبھی بھی پوجے اور پجاری نہیں بنتا. کیا نہ وہ پوجی بنتا ہے اور نہ وہ پجاری بنتا. مانے کسی کی پوجا نہیں کرتا. کون؟ بھگوان. بھگوان پجاری نہیں بنتا. ارے بھگوتی جی تو پوجا کرتا ہوگا. نہیں کرتا. کیوں؟ بولا تو ہے ماتا گرو بغیر ادھار ہو نہ سکے. ستیہ نارائن کتھا میں کیا گائے؟ کیا گائے؟ ہاں اچھا اچھا ستیہ نارائن کی جو کتھا ہوتی ہے اس میں ستیہ نارائن کا مہما دکھائی گئی ہے. لیکن ستیہ لکشمی کو کتھا کے روپ میں نہیں دکھایا گیا. तो शक्ति सिर्फ एक होता है और बाकी दुनिया में सब सब नंबरवार झूठ है। जो झूठ होंगे वो क्या बनेंगे? झूठा ही बनाएंगे। और जो सच्चा होगा 100% वो सच्चा बनेंगे। अगर एक बूंद भी असत्य है तो क्या हो जाएगा? तो असत्य हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। तो भगवान की ग्लानी करते हैं कि परमात्मा पूज्य बनता है, परमात्मा पुजारी बनता है। भगवान कैसे पुजारी बनेगी? क्या उनको नित्य अनिश्चय का चक्र आता है क्या?
नहीं,
नहीं। उनको तो नित्य अनिश्चय का चक्र आता ही नहीं। आता किसको है? जो नंबर वार आत्माएं हैं उनको जन्म मरण का चक्र आता है, अप एंड डाउन में आते हैं, लेकिन वो कभी जन्म मरण के चक्र में आता ही नहीं। तो पुजारी बनेगा क्यों? बाप आकर के समझ देते, क्या समझ लेते कि उसने कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़ी। किसने? इतने तो पढ़े हैं लेकिन उसने उसने कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़े हैं। उसने कह के किस तरह इशारा दिया? जिस तन में फाइनल प्रवेश करके सुखधाम शांति की धाम की स्थापना करते हैं उसके लिए इशारा दिया। उसने कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़े। क्यों? पूजा पिता ने कोई शास्त्र आदि नहीं पढ़े लौकिक जीवन में, पढ़े हैं? पढ़े तो हैं, लेकिन जो शास्त्र आदि पढ़े उनसे इस ज्ञान का कोई कनेक्शन बनता नहीं है। उतना कैसे बनता है? ये तो ईश्वरी ज्ञान ही निराला है। जो बात आकर समझ लेते हैं वो शास्त्रों से समझ नहीं मिल सकती। तो उसने कोई शास्त्र आदि पढ़ी है क्या? कुछ भी नहीं। अनायास ही ड्रामा में पार्ट है वो सुप्रीम सोल। अनायास प्रवेश करता है और पार्ट बजाता है। ये ज्ञान का सागर है, सारी आदि मध्यंत को जानता है। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन और खेल कहाँ होता है? इसी स्थूल वतन में खेल होता है। पहले पहले आज सनातन देवी देवता धर्म का पार्ट बजाने आते हैं। कौन कौन से वंशी? सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, फिर इस्लामी, बौद्धी। नंबर वार तुम समझ गए हो कौन कौन है। इस मानवीय में व नाटक या नाटकशाला में कौन कौन आते हैं, लेकिन 84 जन्म तुम लेते हो क्या? सबसे जास्ती जन्म मरण के चक्कर में भी तुम आते हो। तो ज्यादा जन्म मरण के चक्कर में जो आता है उसको घाटा होना चाहिए, या कम निश्चय अनिश्चय के चक्र में आता हो उसको घाटा होना चाहिए? माने ज्यादा अनुभवी बन जाता है। ज्यादा अप एंड डाउन में आएगा तो आत्मा जास्ती अनुभवी बनती है। गायन भी है, आत्माएं परमात्मा अलग रहे बहुकाल। पहले पहले तुम आत्माएं आई हो तो बाप से तुम अलग हुए हो। भर हुआ गाते हैं परंतु अर्थ कुछ भी नहीं समझते। कौन सी आत्माएं हैं जो बहुत समय अलग रही है बताओ? वो कौन सी आत्माएं हैं जो परमात्मा बाप से बहुत समय अलग रही? कहाँ की बात है? यज्ञ के आदि की बात है। यज्ञ के आदि में ढेर आए और छोड़ करके चले गए बहुत साल के बाद। जब सती की शूटिंग पूरी होती है तो धीरे धीरे आना शुरू होते हैं। तो सती की शूटिंग के बाद त्रेता युग की शूटिंग में भी आते रहते हैं थोड़े थोड़े करके, द्वापर युग की शूटिंग में भी आते रहते हैं थोड़े थोड़े करके, फिर कलयुग की शूटिंग में भी थोड़े थोड़े वो बीच में उपासनाएं आती रहती है। तो सबसे जाति तुम बिछुड़े हो। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चों, पहले पहले विश्व में पार्ट बजाने तुम आए थे, तुमने ही 84 जन्म लिए। तुम किससे कहा जाता है? जो सन्मुख बैठा होता है उसे तुम कहा जाता है। मैं तो सिर्फ थोड़े समय के लिए इनमें प्रवेश करता हूँ। इनमें राम और कृष्ण की आत्माओं में मैं थोड़े समय के लिए प्रवेश करता हूँ। और यह तो पुरानी दूसरी है, कौन सी? ये ब्रह्मा का तन तो पुरानी जूती है। पुरुष की एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पुरानी जूती गई, अभी फिर नहीं लेते हैं। पुरानी जूती किसको बता दिया? दादा लिख रहा है कि ब्रह्मा के तन को बता दिया पुरानी जूती, ये है पुरानी जूती। अच्छा विचार क्या दिया? पुरुष है कि एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं पुरानी जूती गई, स्त्री को क्या बना दिया? जूती बना दिया। कहाँ, कौन से देश में बनाया जाता है पुरानी जूती? भारतवासी जो है वो स्त्री को जूती कहने लग पड़ते। क्यों स्त्री को जूती क्यों बना दिया? पुरुष का जो बुद्ध रूपी पांव है उसको सहयोग देने के लिए स्त्री बनाई जाती है। स्त्री किस लिए बनाई जाती? ऐसा सहयोग करे जो उसके जीवन में क्या आए, सुख शांति आए। तो पांव में जूती किस लिए पहनी जाती है? पांव में जूती इसलिए पहनी जाती है कि कोई ठोकर न लगे, ठोकर का असर न हो, कांटा न लगे, पत्थर से न टकराए। हैं? तो स्त्री को भारत में जूती कह दिया, कहते हैं पुरानी जूती गई, अभी फिर नहीं लेते हैं। ये भी पुराना तन है ना? कौन सा? ज्यादा लेखराज का जो तन है, जो सनातन में जीवित था जिस समय ये वाणी चलाई जा रही थी, उसके लिए कहा ये भी पुराना तन है ना? माना पुरानी जूती में 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है। क्या 84 जन्मों का चक्र लगाया हुआ है? तो मैं आकर इस रथ का आधार लेता हूँ। जिसने 84 जन्मों का चक्र लगाया तब तुम जो ये जूती है तो तुम भी हो, तब जो ये है वही तुम हो। तो मैं आकर के इस रथ का आधार लेता हूँ। पावन दुनिया में तो मैं कभी आता ही नहीं हूँ। क्या पतित पुरानी दुनिया में आता हूँ और
पतितों को पावन बनाता
हूँ, और पतितों को पावन बनाता हूँ। पुरानी दुनिया में आता हूँ, पुराने सन में आता हूँ, न नई दुनिया में आता हूँ और नई दुनिया के नए सन में कभी भी प्रवेश नहीं करता। तुम पति से ही मुझे बुलाते हो, क्यों नहीं प्रवेश करता हूँ पावन सन में, पावन दुनिया में क्यों नहीं आता हूँ? क्योंकि पावन दुनिया में जो देवताएं होते हैं पवित्र, वो कभी बुलाते नहीं। बुलाते कौन है? हे पतित पावन सीताराम आओ। इसलिए वाणी में क्या बोला, जो पतित के पावन बनते हैं वो पतित पावन बाप को बुलाते नहीं, और जो पतित के पावन बनते नहीं वो कभी पतित पावन कहकर बुलाते नहीं। तुम पतित ही मुझे बुलाते हो, आकर के पावन बनाओ। क्या हम अपने आप पावन नहीं बन पाएंगे पुरुषार्थ करके? क्या करो, हमारे पास आ जाओ और आकर के फिर हमको पति से पावन बनाओ। बुलाते बुलाते आखिरी तुम्हारी याद फलीभूत तो होगी ना कि नहीं होगी? फलीभूत तो होगी। जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। ऐसे नहीं पुरानी दुनिया शुरू हो जाए बनना तो मैं द्वापर युग से ही आ जाऊँ। कब आता हूँ? जब पुरानी दुनिया खत्म होने का समय होता है तब मैं आता हूँ। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, पहले पहले क्या करता हूँ? तीन मूर्तियों में से पहले ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म की स्थापना करता हूँ। ब्रह्मा द्वारा अर्थात तुम ब्राह्मणों द्वारा, ब्रह्मा होगा तो ब्राह्मण भी होंगे। ब्राह्मणों की चोटी कही जाती है ना, पहले पहले चोटी ब्राह्मण चोटी, फिर ब्राह्मण चोटी क्या बनती है? ब्राह्मण तो ब्राह्मण तो फिर देवता, क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये तुम बायजोली खेलते हो। तो 84 जन्मों का राज कितना सहन करके समझाते हैं वो लोग, तो त्रिमूर्ति बनाते हैं। कौन लोग? वो लोग तो त्रिमूर्ति बनाते हैं और क्या कहते हैं? कहते हैं ब्रह्मा द्वारा स्थापना। क्या कहते
हैं?
अच्छा, तो वो लोग त्रिमूर्ति बनाते हैं, उस त्रिमूर्ति में ब्रह्मा का ओरिजिनल चित्र भी रख देते हैं और क्या कहते हैं? ब्रह्मा द्वारा साई की स्थापना है, ब्रह्मा द्वारा स्थापना का है कि ब्राह्मण धर्म की स्थापना, नई दुनिया की स्थापना नहीं है? नहीं, वो तो नहीं कहते हैं। वो तो कहते हैं ब्रह्मा द्वारा नई शक्ति की स्थापना, विष्णु द्वारा पालना और शंकर द्वारा बिना। क्या समझाते हैं त्रिमूर्ति में? ब्रह्मा द्वारा नई शक्ति की स्थापना। तो अगर ब्रह्मा द्वारा नई शक्ति की स्थापना करते हैं तो फिर समझाना भी तो पड़े कि क्या आर्थक में ब्रह्मा द्वारा जब उन्होंने शरीर छोड़ा 69 में 18 जनवरी को, तो क्या नई दुनिया की स्थापना हो गई? तो कहेंगे चलो माउंट आबू, हम तुम्हें नई दुनिया दिखाएं। ہم آپس میں لگے ہیں. جیسے بھکتی مارگ والے بھی کہتے ہیں, بھکتی مارگ والے کیا کہتے ہیں, چلو ہری کے, ہری کے بارے میں کہتے بھی ہیں برہما دوارا استھاپنا, پرنتو کس کی برہما دوارا, کس کی استھاپنا, نئی دنیا کی تو استھاپنا نہیں ہوئی, صرف صرف نمبر وار کو سار سنسار براہمنوں کو تیار کیا. یہ تو ماننا پڑے گا کیا برہمنوں کی استھاپنا ہوئی,
لیکن براہمنوں کا شاستروں میں اتنا کوئی گائن اتنا نہیں ہے, وہ تو جانتے ہو, وہ تو نہیں جانتے, تم سمجھتے ہو وشنو راجی کی استھاپنا جس کو لکشمی نارائن کا راجی کہتے ہیں. کیا کہا, برہما دوارا کس کی استھاپنا, وشنو کے راجی کی استھاپنا, لکشمی نارائن کے راجی کی استھاپنا, کس کے دوارا, برہما دوارا. تو برہما جی بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے, ضرور برہما بھی چاہیے, سمجھانی تو بہت سہج ہے. کیا سمجھانی بہت سہج بتائی, تو ضرور براہمنوں میں کوئی براہمن چوٹی ہوگی. کیا براہمن کس کو کہا جاتا ہے, جو پوتر رہتے ہیں ان کو براہمن کہا جاتا ہے. تو جو پوتر رہنے والے براہمن ہیں ان براہمنوں میں ضرور کوئی ایسی براہمن چوٹی ہے. چوٹی کیوں کہا جاتا ہے اور چوٹی کا آکار کیسا دکھایا جاتا ہے, گاؤ کے کھر کے برابر, ایسی انگل بھر کی چوٹی نہیں, کیسی, ہاں جیسی شکتیمان میں دکھائیے, کس کو, وہ جو سوریہ ونشی براہمن ہوتے ہیں ان کو کیسی چوٹی دکھائی, گائے کے کھر کے برابر, گائے کا کھر کیوں دیا, گرو کے معافی کو بدھی ہے, کور مانا بدھ روپی پاؤں کیسا ہے گرو کے معافی. تو جس کو لکشمی نکارا جی کہتے ہیں سمجھانی بہت سہج ہے, ایک تو اپن کو آتما سمجھنا, دیہ ابھیمان کو چھوڑ دیہی ابھیمانی بننا ہے. کیا کہا, یہ استھاپنا بھی کب استھاپن ہوگی, یہ لکشمی نارائن کا راجی بھی کب استھاپن ہوگا, اور برہما دوارا برہما جی کب استھاپن کر سکیں گے, پہلے کیا کریں, پہلے اپن کو دیہ ابھیمان چھوڑ کر کے آتما سمجھ کر کے بیٹھے. تم 84 شریر لیتے ہو, میں تو ایک ہی بار اس مقرر تن میں آتا ہوں, صرف ایک ہی بار آ کر کے لون لیتا ہوں, اس کو کرائے پر لیتا ہوں. کیا, اس کو کرائے پر لیتا ہوں تن کو, میں اس مکان کا مالک نہیں ہوں. کس نے کہا, سپریم سول باپ کہتے ہیں میں اس تن کا مالک نہیں ہوں, تو مالک کون ہے, ارے برہما کے لیے کہا نا کہ میں اس تن کا مالک نہیں ہوں, تو پھر مالک کون ہے اس کا, جس کو تن دے دیا, برہما کا تن مالک برہما ہی ہوا. جب نام ہے برہما مانے بڑی ماں, تو بڑی ماں کا کوئی بڑا پپا بھی تو ہوگا, تو اس لیے اشارہ دیا میں کرائے پر لیتا ہوں, ہم اس مکان کا مالک نہیں, مانا سپریم سول باپ کہتے ہیں میں اس مکان کا مالک نہیں ہوں, ان کو تو پھر بھی کرایہ دیں گے نا, کرایہ دینا تو پڑتا ہے نا. باپ بھی کہتے ہیں میں اس مکان کا کرایہ دیتا ہوں. کیا؟ میں اس مکان کا کرایہ دیتا ہوں. بے حد کا باپ ہے, کیوں کرایہ دیتا ہوں؟ حد کا باپ نہیں ہے, دو چار پانچ آٹھ دس پندرہ بیس بچوں کا باپ نہیں ہے, بے حد کا باپ ہے. تو کچھ تو کرایہ دیتے